वसुंधरा का कन्फेशन। अरमान ने आस्था को फिर कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गया। अब आगे वहीं दूसरी ओर नानी माँ को वसुंधरा का इस तरह वापस घर आना कुछ समझ नहीं आ रहा था। नानी माँ ने वसुंधरा टटोलने के लिए अभिमान जी की तरफ देखकर कहा, बेटा ये औरत इस घर में तो आ गई है, लेकिन ध्यान रखना कहीं ये कोई नई चालबाजी ना शुरू कर दे, क्योंकि अब घर में छोटे छोटे तीन बच्चे हैं और अगर बच्चों के साथ जरा सी भी कोई लापरवाही हो गई तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। ये बात नानी माँ ने वसुंधरा को सुनाते हुए ही कही थी। नानी माँ की बातों में तंज सुनकर अचानक वसुंधरा के चेहरे पर मायूसी छा गई, मानो उन्हें नानी माँ की बातों का बहुत बुरा लगा हो। वो खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस करने लगी और अचानक नानी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए बोली, मैं जानती हूँ माँ जी कि मैंने आज तक जितने भी काम किए हैं वो माफ़ी के लायक नहीं हैं, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाऊंगी या उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करूंगी। मैं अपने पोते अंश और बाकी बच्चों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ऐसा करने से पहले तो मुझे मौत आ जाए। कहते हुए वसुंधरा की आवाज़ में एक दर्द और उदासी छिपी हुई थी और शायद अफसोस भी। वसुंधरा को इस तरह से बिलक बिलक कर रोते हुए देखकर नानी माँ को वसुंधरा पर दया आने लगी और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए बेहद शांत और नर्म आवाज़ में कहा, बेटा हम तो बस यही चाहते हैं कि अगर तुम एक बार फिर इस परिवार में आई हो तो इस बार राजी खुशी से रहो, बड़ी बनकर रहो, पूरे परिवार की बागडोर अपने हाथों में संभालो, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ। अगर तुम ही गलत रहोगी तो बच्चों को सही रास्ता कहाँ से दिखाओगी। नानी माँ ने वसुंधरा को हरेक शब्द बेहद शालीनता के साथ कहा था। नानी माँ का इतना प्यार और अपनापन देखकर वसुंधरा अचानक उठी और नानी माँ को गले लगाकर जोर जोर से फूट फूट कर रो पड़ी। सच में वसुंधरा का इस तरह रोना देखकर वहां मौजूद सभी सदस्यों की आंखें भर आई थीं। तभी राधिका और रश्मि तुरंत आगे आईं और वसुंधरा के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें संभालने लगीं। रौनक, रश्मि, मारिया और वंशिका भी आगे आकर वसुंधरा को दिलासा देने लगीं। वसुंधरा ने बारी बारी से सबके सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगी और सबने उसे गले लगाकर अपना लिया था। आखिर में वसुंधरा अभिमान जी के सामने जाकर खड़ी हो गई और बेबस आवाज़ में बोली, अभिमान बस तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ कि अगर इस बार मैंने कोई भी गलती की तो तुम अपने हाथों से मेरी जान ले लेना, लेकिन मुझे अपने आप से दूर मत करना। इतना कहते ही वसुंधरा की आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे थे। वसुंधरा की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अभिमान जी का दिल भी भर आया। उन्होंने भी वसुंधरा को कसकर गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर दादाजी पूरी तरह भावुक हो गए थे, क्योंकि वो अपने बेटे अभिमान को खुश देखना चाहते थे और अभिमान की खुशी वसुंधरा से होकर ही गुजरती थी। दादाजी ने वसुंधरा को बचपन से ही अपनी बेटी की तरह प्यार किया था, लेकिन वसुंधरा का दौलत और गलत रास्तों की तरफ बढ़ता हुआ व्यवहार देखकर और अमरेश द्वारा लिए गए पुराने फैसले ने उनके दिल में वसुंधरा के खिलाफ कड़वाहट भर दी थी। फिर भी कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी सोच के साथ दादाजी ने वसुंधरा को एक बार फिर अपना लिया था। वहीं वीर एक कोने में चुपचाप खड़ा हुआ था। दादाजी ने उसे पास बुलाकर एकदम से कहा, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो, चलो फटाफट से मेरे साथ चलो, पौधों में पानी डालना है। इतना कहकर वो हंस दिए, क्योंकि उन्होंने ये बात कुछ मजाकिया अंदाज में कही थी। अब जैसे ही वीर ने दादाजी के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो वीर की आंखों में अनजाने में नरमी सी छा गई और अचानक वो रोते हुए दादाजी के गले लग गया था। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे थे। वहीं दूसरी ओर आस्था के मन में अब यही सवाल घूम रहा था कि आखिरकार अरमान उसे तैयार होकर कहाँ लेकर जाना चाहता है। लेकिन ज्यादा न सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली, तैयार होकर हॉल में आ गई और उसने पूरे परिवार का ये मिलन देख लिया। आस्था वसुंधरा की गलतियों को माफ करने के लिए अपना मन बना चुकी थी, इसीलिए वो वसुंधरा के पास आई और चंचलता से बोली, वसुंधरा आंटी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप हमें धोखा नहीं देंगी। आस्था की मीठी और हल्की आवाज सीधे वसुंधरा के दिल पर असर कर गई। वसुंधरा का दिल भर आया, उन्होंने पहली बार आस्था को दिल से अपनी बहू के रूप में अपना लिया। अब नानी माँ को लगने लगा था कि शायद अब आस्था का परिवार पूरा हो चुका है। पहले इस घर में कोई बड़ी महिला नहीं थी, लेकिन अब वसुंधरा आ गई है। उम्र और रिश्ते दोनों में वो सबसे बड़ी है। नानी माँ को डर था कि अगर वो यूं ही यहाँ रुकती रहीं तो कहीं वसुंधरा को ये ना लगे कि वो उसका हक छीन रही हैं। इसीलिए मौका देखकर नानी माँ ने दादाजी से कहा, भाई साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे बहू के पास जाकर रहना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। प्रियंका की शादी के बाद तो उससे भी मिल नहीं पाई हूँ। बस कुछ दिन उनके पास रहकर वापस लौटाऊंगी। इतना कहते ही नानी माँ किसी तरह से सबसे अपनी नजरें चुरा रही थीं। नानी माँ के मुँह से निकले उन शब्दों ने सभी को सदमे में डाल दिया।
सभी सदस्यों के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था। इस बात पर सभी को तगड़ा झटका लगा था और अचानक घर की सारी लड़कियां चीख पड़ी, नहीं नहीं नानी माँ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। वहीं रौनक तपाक से बोली, नहीं नहीं नानी माँ, मेरी गुनगुन का ध्यान कौन रखेगा, आप तो जानती है ना, वो मुझसे ज्यादा आपके पास रहती है। इस पर नानी माँ मुस्कुराकर कोमलता से बोली, बेटा बस कुछ दिनों की ही बात है, हम हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे, वैसे भी तुम लोगों के बिना हमारा दिल कहाँ लगेगा, बस कुछ दिन रहकर वापस आ जाएंगे। ये कहते हुए नानी की आवाज में ममता और प्यार छलक रहा था। अब सबको लगा कि अपने स्वार्थ के लिए नानी माँ को रोकना ठीक नहीं रहेगा, आखिर उनका भी अपना बेटा, बहू, पोती और अपनी जिंदगी है, अगर वो कुछ दिनों के लिए उनके पास रहना चाहती हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए। तभी आकाश ने सबको समझाया, नानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर वो कुछ दिनों के लिए अपने बेटे बहू से मिलने जाना चाहती हैं तो हमें उन्हें जाने देना चाहिए, ये उनकी सेहत के लिए भी जरूरी है। आकाश की आवाज में सीरियसनेस साफ झलक रही थी, मानो वो भी नानी माँ के फैसले से सहमत हों। नानी माँ की सिचुएशन को समझते हुए सब खामोश हो गए, लेकिन आहान रूठे हुए अंदाज में बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा तो नानी माँ के बिना एक दिन भी गुजारा नहीं होता, मैं रौनक के बिना तो रह सकता हूँ लेकिन नानी माँ के बिना नहीं। ये कहते हुए उसकी शक्ल ऐसी थी मानो जैसे उससे कोई उसका प्यारा खिलौना दूर कर रहा हो। आहान की इस हरकत पर सब जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। नानी माँ ने प्यार से आहान के कान पकड़ते हुए कहा, खबरदार बदमाश, अगर तूने हमारे पीछे हमारी बेटी और पोती को परेशान किया तो, और हाँ ध्यान रखना, अपना और हमारी दोनों प्रिंसेस का खास ख्याल रखना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करना। तभी आहान के पास खड़ा हुआ ध्रुव बोल पड़ा, ठीक है नानी माँ, आप तैयार हो जाइए, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। जाने से पहले नानी माँ ने एक बार फिर आस्था की तरफ रहस्यमयी अंदाज से देखा। इस पर आस्था ने पलकें झपकाई, फिर हाँ में गर्दन हिला दी और तब नानी माँ जल्दी ही ध्रुव के साथ चली गई। ठीक उसी वक्त आस्था के पास अरमान आया और आंखों के इशारों से उसे बाहर आने को कहकर वहां से चला गया। आस्था ने एक नजर दादाजी की ओर देखा जो अंश के साथ खेलने में बिजी थे। आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। आस्था उनके पास जाकर बोली, दादाजी हमें थोड़ा सा काम है, तो क्या आप तब तक अंश का ख्याल रखेंगे?
इस पर दादाजी अपनी जगह से उठे और आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोले, मेरे बच्चे तुम जाओ और अपना काम करो, और हाँ अपना ध्यान रखना। बेटा आज जो तुमने अपने अभिमान के लिए किया है, सच में हम उसके लिए तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने अभिमान की उदासी महसूस कर ली थी, लेकिन हम किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वसुंधरा बहुत कुछ कर चुकी थी और अब हम में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम वसुंधरा को एक बार फिर अभिमान या किसी और की जिंदगी में लेकर आ पाते। लेकिन अचानक जब अरमान उसे यहां लेकर आया, तब हम समझ गए कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। बेटा अब बस जल्द से जल्द अरमान की यादें वापस आ जाएं, उसके बाद हमें अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। ये कहते कहते दादाजी लगभग रोने को हो गए। इस पर आस्था ने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें शांत कराते हुए बोली, हम सब ठीक कर देंगे दादाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर आस्था ने अंश को किस किया और वहां से बाहर चली गई। वहीं आस्था और अरमान के जाने के बाद आहान, आकाश, सुमित, अबीर और अविनाश हैरानी से दरवाजे की ओर एकटक देखने लगे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरमान क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो आस्था को कहाँ लेकर जा रहा है। तभी अविनाश ने चुपके से सबको स्टडी रूम में आने का इशारा किया। इस वक्त सबके चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे, सभी एक एक करके स्टडी रूम में जमा हो गए थे। तभी वहां आहान की उलझन भरी आवाज सुनाई दी, आखिर अरमान भाई के दिमाग में चल क्या रहा है? इस पर आकाश बोला, ये बात तो साफ है कि अभी तक अरमान की यादें वापस नहीं आई हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक अरमान ब्लैक डेविल के साथ साथ राजवीर की कब्र भी खुदवा चुका होता। कुछ न कुछ ऐसा है जो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है, हमें अरमान और आस्था का पीछा करना चाहिए, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। ये कहते हुए आकाश का चेहरा हल्का सा बदला। आकाश की आवाज में छुपी हुई चेतावनी भांपते हुए अबीर तुरंत बोल पड़ा, मैं जा रहा हूं उनका पीछा करने, वैसे भी अरमान की मानसिक स्थिति मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, और उस वायरस को लेने के बाद तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, अगर उसने अपनी जिद में मेरी बटरफ्लाई को कुछ कर दिया तो। इतना कहते कहते अबीर थोड़ा रुक सा गया और जल्दी से अपनी बात करेक्ट करते हुए बोला, अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर आस्था को कुछ हो गया तो, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी वहां सुमित की ठंडी आवाज सुनाई दी, मुझे लगता है कि हमें उनके लौटने का इंतजार करना चाहिए, अगर अरमान को जरा सी भी भनक लग गई कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं तो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि वो कितना बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है। इतना ही नहीं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा,
उसकी आंखों में इस वक्त अजीब सी सनक और गुस्सा नजर आ रहा था। सुमित की ये बात सुनकर सभी ने गंभीरता से अरमान के बिहेवियर के बारे में सोचा। वहीं दूसरी तरफ मनोज जी ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और भावुक होते हुए बोले, माँ आपको हमारी याद आ गई। ये सुनकर नानी माँ थोड़ी इमोशनल हो गई और कोमलता से बोली, अरे बेटा कैसे याद नहीं आएगी, तू हमारा इकलौता बेटा है। वैसे तो तू हमें हफ्ते में एक दो बार फोन किया करता था, लेकिन पिछले दो हफ्तों से तेरा फोन नहीं आया तो मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, इसलिए मैं यहाँ तुझसे मिलने चली आई और अब मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। कहते हुए नानी माँ के चेहरे पर प्यार और चिंता दोनों झलक रहे थे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही सीमा जी ने नानी माँ को देखा तो वो भी चुपचाप आकर उनके पास बैठ गई। तब नानी माँ ने हल्की सी नज़र पूरे घर पर डाली और अपने बेटे का चेहरा पढ़ते हुए बोली, पता नहीं बेटा यहाँ का माहौल कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। इतना कहते ही उन्होंने सीमा जी को सवालिया नजरों से देखा। तब मनोज जी ने सीमा जी को अपनी आंखें दिखाते हुए नामे गर्दन हिला दी, जैसे वो अपनी पत्नी को कुछ बताने से मना कर रहे हों। लेकिन नानी माँ कहाँ मानने वाली थी, वो लगभग सीमा जी को डांटते हुए बोली, तो इस नालायक की शक्ल क्या देख रही है, बताओ बेटा क्या बात है। क्योंकि जब भी मैं यहाँ तुम सबसे मिलने आती थी तो हमेशा मुंह चढ़ा लिया करती थी, इस तरह कभी मेरे पास आकर नहीं बैठती थी। जैसे ही नानी माँ ने सीमा जी पर थोड़ा सा दबाव डाला तो सीमा जी की आंखें भर आईं और वो फूट फूट कर रोने लगीं। सीमा जी को रोते हुए देख के मनोज जी की आंखें हैरानी से फैल गईं। तभी सीमा जी ने टूटे हुए शब्दों में धीरे धीरे नानी माँ को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। इस पर नानी माँ के चेहरे की रंगत तुरंत बदल गई। जिस शक के चलते वो यहाँ आई थी वो शक अब 100% यकीन में बदल चुका था। देर न करते हुए उन्होंने सीमा और मनोज जी को आश्वासन दिया, उन्हें समझाया और फिर आस्था को फटाफट मैसेज करना शुरू कर दिया। आहान ने नानी माँ को इतना तो सिखा ही दिया था कि वो आसानी से व्हाट्सएप पर आस्था को वॉइस मैसेज भेज सकें। फिलहाल दूसरी ओर अरमान बड़ी ही खामोशी से कार चला रहा था और आस्था हल्का सा घबराते हुए उसकी ओर देख रही थी।